वो डरते हुए बोली, कौन है? पर समर्थ कुछ नहीं सुन रहा था। उसकी बॉडी उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी, जैसे उसके अंदर सोया कोई जानवर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। त्रिशा थोड़ा आगे बढ़ी और उसकी नज़र जैसे ही समर्थ पर गई, उसकी चीख निकल गई। उसकी आवाज़ सुनकर समर्थ ने अपनी नशीली लाल आंखें उसकी ओर घुमाई। त्रिशा आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। समर्थ के हाथ से खून निकल रहा था जो शावर के पानी के साथ बह रहा था। त्रिशा खून देखकर बुरी तरह डर गई और तेज कदमों से चलते हुए समर्थ के पास गई। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, खून? इतना ज्यादा? समर्थ ने गर्दन टेढ़ी करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। शावर का पानी अब उस पर भी गिर रहा था। उसका शर्ट भीगकर उसके सीने पर चिपक चुका था। वहीं त्रिशा हाथ को अच्छे से देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर समर्थ को कितनी चोट लगी है। समर्थ ने एकदम से उसका हाथ छोड़ते हुए उसकी कमर पकड़ ली और उसे खुद से सटा लिया। त्रिशा की सांसें एकदम से अटक गईं और कुछ पल बाद वो बुरी तरह छटपटाने लगी। समर्थ की नज़र उसके गुलाबी होठों पर थी जिन पर पानी की बूंदें गिर रही थी। एकदम से समर्थ ने उसे कमर से पकड़ते हुए हल्का सा उठाया और उसके होठों को अपने होठों के बीच दबाते हुए कसकर काट लिया। त्रिशा की आंखों में पानी आ गया जो शावर के पानी में कहीं गुमसा हो रहा था। त्रिशा ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, छोड़ो मुझे टेविल। पर समर्थ ने अगले ही पल फिर से उसके होठों को अपने मुंह में भर लिया और अब बहुत सॉफ्टली उसके होठों को चाटने लगा, जिससे त्रिशा की पूरी बॉडी पर रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल समर्थ ने खींचते हुए उसकी बदन से उसकी शर्ट उतारकर फेंक दी और उसकी गर्दन पकड़ते हुए उसे गहरे किस करने लगा। उसका एक हाथ लगातार त्रिशा की खुली कमर पर चल रहा था और एक गर्दन पर कसा हुआ था। त्रिशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके नाजुक हाथों का समर्थ जैसे मस्क्यूलर आदमी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने कुछ पल उसे छोड़ा और त्रिशा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। समर्थ ने अपनी पैंट उतारकर फेंक दी, जिसके साथ ही त्रिशा बाथरूम से बाहर आ गई। उसका दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। वो आगे जा पाती उससे पहले ही समर्थ ने उसे पकड़ते हुए अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर उसे पटकते हुए बोला, यू वॉन्टेड प्लेफुल बेबी डॉल? शुरू तुमने किया था मेरे करीब आके, अब पूरा करने का हक मेरा है। इतना भूलकर वो उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों पर हाथ फंसाते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपा लिया। पप प्लीज डेविल, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं आपकी हर सजा मानने के लिए तैयार हूँ, त्रिशा ने रोते हुए कहा। पर समर्थ का इस पर कोई रिएक्शन नहीं था। त्रिशा ने फिर से कुछ बोलना चाहा, उससे पहले समर्थ ने उसके होठों को अपने होठों से दबा लिया। कुछ देर बाद उस कमरे में त्रिशा की एक जोरदार चीख गूंजी और उसके बाद सिसकियां और रोने की आवाज। पता नहीं रात के कौन से पहर समर्थ ने अपनी मनमानी बंद की और उसकी बगल में थककर लेट गया। अगली सुबह रावत मेंशन, अमर जानवी के भरोसे पिलो को कसकर बाहों में भरे सो रहा था। वहीं जानवी नहाकर तैयार हो रही थी। अमर के कानों में जैसे ही खनखन की आवाज आई, उसने आंखें खोलकर देखा और पिलो को देखकर उसका मुंह बन गया। उसने जल्दी से मिरर की तरफ देखा। जानवी नेवी ब्लू कलर की नेट की साड़ी पहने खड़ी थी, फुल स्लीव व्हाइट ब्लाउज जिसका बैक नेक डीप था, वो मांग भरते हुए जल्दी से अपने कानों में झुमके पहन रही थी। अचानक ही उसकी कमर पर ठंडे हाथ लगे और वो एकदम से चीखते हुए पीछे मुड़ी। अमर जानवी के गीले बालों को सूंघते हुए गहरी आवाज में बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी खुली कमर, भीगे बाल, गीले नर्म होंठ मुझे क्या याद दिलाते हैं? जानवी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। क्या कभी अमर ने किसी और से प्यार किया था जो अब उसे किसी की याद आती है? जानवी का दिल एकदम भारी भारी महसूस करने लगा। अचानक ही अमर उसके होठों पर अपना अंगूठा रखकर उन्हें रगड़ते हुए बोला कि हमने अभी तक हनीमून सेलिब्रेट नहीं किया बीवी। जानवी के चेहरे पर कुछ देर पहले जो परेशानी थी, अब उसकी जगह शर्म ने ले ली थी। अचानक ही उसके गाल जलने लगे थे। उसने आंखें बंद करते हुए अमर के हाथ को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, आपकी बेशर्मी सुबह ही शुरू हो जाती है, मुझे नीचे जाना है। अमर ने उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगाते हुए कहा, जितना मुझे तड़पाओगी उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें तड़पना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना बेबी। अमर की आवाज में एक अलग सी सनक महसूस हो रही थी जो जानवी की रूह तक कांपने पर मजबूर कर रही थी। अमर ने उसके फोरहेड पर हल्का सा किस किया और बाथरूम में चला गया। जानवी कुछ पल वहीं खड़ी रही क्योंकि उसके जहन में अमर की बातें गूंज रही थीं। फिर कुछ देर बाद एक गहरी सांस लेते हुए वो नीचे चली गई। समर्थ का प्राइवेट बंगला। आंखों पर धूप पड़ने के कारण समर्थ की आंखें खुली। वो माथे पर बल डालते हुए धीरे से अपनी पलकें खोली और फिर अपने सर पर हाथ रख लिया क्योंकि उसका सर दर्द के मारे फट रहा था। वो उठकर बैठते हुए इधर उधर देखता है तो अचानक ही उसकी आंखें फैल जाती हैं क्योंकि त्रिशा इस वक्त कुछ इस हालत में थी जिसे देख पाना समर्थ के बस की बात नहीं थी। उसने जल्दी से नजरें फेर ली लेकिन फिर अचानक ही उसकी नज़र बेडशीट पर लगे खून के धब्बों पर पड़ी और उसने जल्दी से त्रिशा को हिलाते हुए उठाने की कोशिश की। ए, उठो, तुम्हें क्या हुआ है? उसने घबराते हुए कहा, पर त्रिशा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा था, चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। समर्थ जल्दी से उसके शरीर पर कंबल डालते हुए उठ जाता है और अपनी पैंट पहनते हुए अपना फोन ढूंढता है। फोन मिलते ही वो डॉक्टर को कॉल करता है जो कल भी त्रिशा को चेक करके गई थी, और कुछ ही देर बाद डॉक्टर त्रिशा को देखने आ जाती है। समर्थ अब भी बिना शर्ट के घूम रहा था। उसकी पीठ पर त्रिशा के दिए नाखूनों के निशान चमक रहे थे जो डॉक्टर को भी दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर ने उसे अपनी नजरें फेरते हुए जल्दी से त्रिशा को चेक करना शुरू किया, और जैसे ही उसने हल्की सी कंबल हटाई, उन बाइट मार्क्स को देखकर समर्थ की तरफ देखते हुए बोली, सर क्या आप कुछ देर बाहर जा सकते हैं? और समर्थ जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए बाहर चला जाता है। उसका दिल किसी मेट्रो की स्पीड से धड़क रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। उसे कल रात का याद था कि किसी ने उसे ड्रग्स दे दिए थे, पर उसे ये लग नहीं रहा था कि वो त्रिशा के साथ ऐसा कुछ कर देगा। वो अपने सर पर ही मुक्का मारते हुए रात की बातें याद करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे सब कुछ धुंधला याद आ रहा था, जैसे त्रिशा ही उसके पास आई थी। वहीं डॉक्टर त्रिशा को चेक करती है तो अचानक ही हैरानी से उसकी आंखें फैल जाती है, क्योंकि बेड पर पड़े खून को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं थी, और इसका साफ मतलब था कि त्रिशा का मिसकैरेज हो चुका है। डॉक्टर के हाथ भी कांपने लगे थे। उसकी आंखों में हल्की नमी आने लगी थी। उसे याद आ रहा था कल त्रिशा अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए कैसे उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी कि वो समर्थ को कुछ ना बताए, पर शायद उसकी औलाद की नसीब में मरना ही लिखा था। वो चाहकर भी उसे नहीं बचा पाई।